My message addresses a fundamental
मेरा संदेश एक बड़ा सा मूल प्रश्न आत्मिक परिणामों को संबोधित करता है. शुद्धता का नियम इतना आवश्यक क्यों है? मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा से सच्चाई के नियमों जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है उनका पुष्टि करेगा. शुद्धता का आनंद महत्व को सिर्फ हमारे स्वर्ग के पिता को उसके बच्चों के लिए आनंदित होने की योजना को समझना है. सारी मानव जाति, पुरुष और स्त्री दोनों को परमेश्वर ने अपनी आकृति में बनाया. प्रत्येक स्वर्गीय माता पिता की प्रिय आत्मा पुत्र या पुत्रियां हैं. उनका पवित्र प्रकृति और भाग्य है. नश्वरता में आने से पहले सारे पुरुष और स्त्रियां परमेश्वर के साथ आत्मिक दुनिया में रहते थे. पिता की योजना थी कि उसके आत्मिक पुत्र और पुत्रियां भौतिक शरीर पाएं और नश्वरता का अनुभव लें और उत्कृष्टता की ओर प्रगति करें. हमारा भौतिक शरीर सांस लेना संभव करता है गहराई से, और अनुभव जो कि हमारे पहले के जीवन में प्राप्त हो ही नहीं सकता था. तथापि हमारे रिश्ते दूसरे लोगों के साथ, हमारी पहचाने और सच्चाई के साथ करने की क्षमता, और हमारे नियमों और यीशु मसीह के सुसमाचार के धर्म विधियों का पालन करने की योग्यता हमारे भौतिक शरीर के द्वारा होती है. नश्वरता के विद्यालय में हम कोमलता, प्रेम, कृपा, आनंद, दुख, निराशा, दर्द और यहाँ तक शरीर की सीमाओं का मतलब भी, जो हमें अनंतता की तैयारी की ओर ले जाने का एहसास कराता है. साधारणता कहा गया, यहाँ पर सबक हैं जो हमें सीखने हैं और अनुभव करने हैं. हमारे साथ जो होते हैं, जैसे धर्मशास्त्र वर्णन करता है, शरीर के अनुसार. धरती की रचना के बाद आदम को अदन की बाड़ी में रखा गया था महत्वता से. तथापि परमेश्वर ने कहा, ये अच्छा नहीं कि आदमी अकेला रहे. हवा आदम की पत्नी और सहायक बनी थी. आदमी और औरत दोनों के अद्भुत संयोग से आत्मिक, शारीरिक, मानसिक और भावनाओं की योग्यता को, आनंद की योजना को विधि विधा करने की जरूरत है. तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के है. आदमी और औरत को इरादतन, बल, आशीष, पूर्णता और एक दूसरे की पूर्णता से सीखना है. जिस मतलब से नश्वर जीवन की रचना की गई है, उसे पवित्रता से नियुक्त किया गया. पहली आज्ञा परमेश्वर ने आदम और हवा को पति और पत्नी होने के नाते अपने अभिभावक के होने के भाग्य को रखना था. पृथ्वी पर फलों और फूलों को की आज्ञा आज भी कायम है. तथापि आदमी और एक औरत के बीच शादी सही आधिकारिक तरीके से हो, जिसके द्वारा पहले के जीवन की आत्मा नश्वरत में प्रवेश करे. शादी से पहले और पूरे तौर से शादी की सच्चाई की इस पाक पवित्रता को पूरी तरह से भावनाओं पर संयम रखकर बचाएं. प्रजनन की शक्ति का आत्मिक महत्व है. इस शक्ति का गलत इस्तेमाल करना पिता की योजना के उद्देश्य और हमारे नश्वर अस्तित्व को उलट देता है. हमारे स्वर्गीय पिता और उसका पुत्र सृष्टि करता है, और हम में से प्रत्येक को उनकी रचना की शक्ति का भाग सौंपा गया है. स्वर्गीय पिता की योजना के उद्देश्य का इस्तेमाल सही तरीके से करके के मूल तत्व को सक्रिय करने के लिए विशिष्ट रेखांकित की गई है. हम इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं और महाशक्ति हमारी खुशी को नश्वरता में और हमारे अनंतता की मंजिल को पाने की महान लगन को और बढ़ा देती है. नश्वर जीवन की रचना की शक्ति महान उत्कृष्ट शक्ति है जो परमेश्वर ने अपने बच्चों को दी है. ये पहली आज्ञा में आदेश था, परंतु दूसरी महत्वपूर्ण आज्ञा इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए दी गई थी. शुद्धता के नियम पर हमने जोर देकर अपनी प्रजनन की शक्ति में परमेश्वर की योजना को पूरे करने के समझदारी के उद्देश्य द्वारा बताया है. शादी से बाहर आदमी और औरत के महापवित्र गुण का एक या दूसरी तरह से प्रयोग करना एक नीचा और काम विकृति का पाप है. अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह का गिरजाघर ही एक अकेला है जो भावनाओं के आचरण का दृढ़ स्तर है. परमेश्वर की योजना का आदेश विवाहित संबंध सिर्फ पुरुष और स्त्री के बीच में ही होना चाहिए. ऐसे रिश्ते सिर्फ जिज्ञासा में नहीं जांचे जाते, न ही भूख की तृप्ति को या मन बहलाने की तरह या स्वार्थी बन पीछा कर मनोरंजन करके। यह न ही विजय प्राप्त करने के लिए या साधारणता सिर्फ काम करने के लिए नहीं होते हैं, न ही यह नैतिकता का हमारी पवित्र प्रकृति का एकमात्र एहसास है और भाग्य और भावनाओं की ओर शक्ति का और पति और पत्नी के बीच का आत्मिक बंधन है। हम नैतिक रीति के साथ आशीषित हैं और अपने परमेश्वर के बच्चे होने पर पवित्र परंपरा की परिभाषा के द्वारा करते हैं और वासना के भाव द्वारा या समकालीन आदत और न्याय से नहीं करते हैं। कुछ दशा तक राजा बिन्याबिन द्वारा स्वाभाविक प्रकृति का मनुष्य का वर्णन हम सबों में अच्छे से जीवित है। पुरुष और स्त्री की स्वाभाविक प्रकृति बिना पश्चाताप वासना और कामुक है। यह अनुकूल और अधिकतम है, यह गौरव और स्वार्थी है। जैसे स्पेंसर डब्ल्यू किम्बल ने सिखाया, स्वाभाविक प्रकृति का मनुष्य धरती का मनुष्य है जो पशु कुरुवर्ती आवेश उसके आत्मिक प्रवृत्ति को धुंधला कर देता है। अंतर में मसीह के पुरुष या स्त्री आत्मिक और सभी आवेशों के लगाम लगते हैं, संयम और नियंत्रित करते हैं और परोपकारी और स्वार्थी होते हैं। मसीह के पुरुष और स्त्री परमेश्वर के वचन को अपने पर लेते हैं, अपने आप को नकारते और उसका क्रूस उठाते हैं और सीधे और सक्रिय रास्ते पर विश्वासी, ईमानदार और उद्धारकर्ता और उसके सुसमाचार पर ध्यान लगते हुए चलते हैं। परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने के नाते हम उसके पवित्र सामर्थ्य के वारिस हैं, परंतु अभी हम गिरे हुए संसार में रहते हैं, इस तत्व से बाहर जिससे हमारी शरीर की रचना की स्वाभाविकता गिरती है और सभी वस्तु पाप, घूस लेना और मौत को आकर्षित करती है। फलस्वरूप आदम का पतन और उसके आत्मिक और सांसारिक परिणाम का हम पर सीधा हमारे शरीरों पर प्रभाव करता है और हम दोहरे इंसान हैं। हमारी आत्मा के लिए वे हमारा अनंत भाग है, स्थाई शरीर में अस्थाई आवास है जो कि पतन का कारण है। जैसे यीशु में प्रेरित पौलुस से जोर देकर कहा, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। नश्वरता की परीक्षा का सुस्पष्ट स्वभाव है, तब निम्नलिखित प्रश्नों में सारांश कर सकते हैं। क्या मैं स्वाभाविक प्रकृति के मनुष्य की ओर झुकाव का जवाब देता हूँ या क्या मैं पवित्र आत्मा की ओर झुकने का प्रलोभन करता हूँ और स्वाभाविक प्रकृति के मनुष्य को अलग करता हूँ और प्रभु मसीह के प्रायश्चित के द्वारा संत बनता हूँ। यह परीक्षा है। यीशु मसीह के प्रायश्चित के द्वारा सारी भूख, इच्छा, लगाव और स्वाभाविक प्रकृति के मनुष्य का प्रभाव से ऊपर उठाया जा सकता है। हम यहाँ धरती पर ईश्वरीय गुणों को बनाने और शरीर के सभी आवेश को लगाम लगाने में प्रगति करते हैं। पिता की योजना उसके बच्चों का नेतृत्व प्रदान करने, आनंदित होने में उनकी मदद करने और पुनरुत्थान उत्कर्ष शरीरों के साथ उन्हें वापस सुरक्षित घर जाने के लिए बनाया गया है। स्वर्गीय पिता की हमारे लिए कामना की कि हम ज्योति में इकट्ठे होंगे और आशा से भर जाएंगे। विपरीत में ल्यूसिफर का उद्देश्य पिता के पुत्र और पुत्रियों को परेशान करने और नाखुश और अनंत प्रगति की ओर रोकने के काम में लगा रहता है। झूठों का पिता का लंगर लगने का उद्देश्य है कि हम सभी उसकी तरह आशाहीन हो जाएं। ल्यूसिफर चाहता है हम आखिरकार अंधकार में और बिना आशा के अकेले हों। शैतान निर्दयता से पिता की योजना के अति महत्वपूर्ण तत्वों को तोड़ने मरोड़ने के काम में लगा रहता है। उसके पास शरीर नहीं है और उसकी अनंत प्रगति रुक गई है। जैसे बहते नदी के पानी को बांध बनकर रोक देते हैं, तो शत्रु की अनंत प्रगति निष्फल कर दी गई क्योंकि उसके पास भौतिक शरीर नहीं है। उसके विद्रोही होने के कारण ल्यूसिफर ने अपनी सारी नश्वर आशीषों और मांस और हड्डी से बने शरीर के द्वारा होने वाले अनुभवों से खुद को नकारा था। वह सबक नहीं सीख सकता जो कि सिर्फ देहधारी आत्मा सीख सकती है। वह वास्तविकता को निराश जोड़ता और सांसारिक मानव जाति के पुनरुत्थान को त्वच समझता है। घनित शब्द का एक धर्मशास्त्र का प्रभावशाली अर्थ प्रदर्शित कर उसकी नाकामियों में लगातार बढ़ती दिखाई देती है और हमारे स्वर्गीय पिता की तरह बनने में लगा रहता है, क्योंकि भौतिक शरीर पिता की आनंद की योजना का केंद्र और हमारी आत्मिक बढ़ोती है। लूसिफर हमारी प्रगति को, हमारे शरीरों को अनुचित ढंग से इस्तेमाल कर लालच द्वारा विफल करने में लगा रहता है। अनंतता का आखिरी ताना है कि विरुद्ध, जो कि निश्चित रूप से दुखी है क्योंकि उसके पास भौतिक शरीर नहीं, हमारे शरीरों का गलत इस्तेमाल करने के द्वारा वह हमें अपनी दुर्गति बांटकर प्रलोभित करता है। उसके पास ऐसा कोई औजार नहीं जो हमें लालच देकर, प्राथमिकता पर निशाना लगाकर हमारी आत्मिकता का नाश करने का प्रयत्न करने का प्रयास करें। सदाचार के नियम का उल्लंघन करना और हमारे भौतिक अस्थाई आवास का दुरुपयोग करना एक दुखित पाप है। उनके लिए जो उद्धार की योजना को जानते और समझते एक विरोध के विद्रोह में शरीर भ्रष्ट करते हैं और हमारी परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों की सच्ची पहचान को नकारता है। जैसे हम नश्वरता से पार और अनंतता में देखते, इस पर विचारना आसान है कि कपटी वकील साथी के विरुद्ध द्वारा अस्थाई और खाली है। अल्मा ने अपने पुत्र सिब्लोन को, अपनी उत्तेजनाओं पर लगाम रखो जिससे कि तुम प्रेम से परिपूर्ण रहो। मध्य से स्वाभाविक प्रकृति के मनुष्य का अनुशासन हम में से प्रत्येक को मूल्यवान बनने, गंभीर होने और अंत तक परमेश्वर और उसके बच्चों से प्रेम करना संभव करता है। प्रेम योग्यता को खोलकर करने से बढ़ता और प्रवर्तक अति सेवन से कम होता है। अध्यक्ष मेरियन जी रोमनी घोषित करते हैं, मैं सोच सकता हूँ कोई भी आशीष उन शुद्धता और सदाचार के वादों के और अधिक इच्छा की उत्सुकता से नहीं हो सकती है। यीशु ने भिन्न भिन्न सदाचार के विशेष इनाम के बारे में बोला था, परंतु महानता को सुरक्षित रखा है। तो मुझे ये लगता है जिनके मन शुद्ध है वे, उसने कहा, परमेश्वर को देखेंगे, और वे ही नहीं प्रभु को देख सकेंगे परंतु वे उसकी उपस्थिति में घर जैसा महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर उद्धारकर्ता ने वादा किया है, सदाचार के बिना किसी रुकावट के तुम्हारे विचार सजे, तब तुम दृढ़ विश्वास में परमेश्वर के सामने पक्का हो।
In the presence of family, friends, church associates, and ultimately, the Savior. Our innate longing to belong is fulfilled in righteousness as we walk in the light with hope. Some of you who receive this message need to repent of sexual or other sins. The Savior is often referred to as the Great Physician. And this title has both symbolic and literal significance.
हम सभी ने दर्द का अनुभव शरीर की चोट या घाव से किया है। जब हम दर्द में होते हैं, हम आदेश रूप में राहत को खोजते और उपचार और दवा के लिए आभारी होते हैं, जो कि हमारी पीड़ा का सहन योग्य करता है। पाप को आत्मिक घाव की तरह सोचते हैं, जो कि अपराधी होने का कारण, या जैसे अल्मा ने अपने पुत्र कोरिएंटन से वर्णन करता है, अनंत करण में पश्चाताप करने की भावना, हमारी आत्मा में गुनहगार की भावना होना, हमारे शरीर में क्या दर्द हो देता है, खतरे की चुनौती और अतिरिक्त नाश से सुरक्षा की। उद्धारकर्ता का प्राश्चित नर्म मलहम की तरह होता है, जो कि हमारे आत्मिक घाव को चंगा और गुनाह से मुक्त करता है। इसलिए इस मलहम को प्रभु यीशु मसीह के नियम में विश्वास के पश्चाताप और लगातार अज्ञाकारी होने के द्वारा लगा सकते हैं। ईमानदारी से पश्चाताप करने से आत्मा में शांति, आराम और आत्मिकता की चंगाई और नवीनीकरण होता है। आपके धर्म अध्यक्ष या शाखा अध्यक्ष आत्मिक वैद्य के सहायक होते हैं, जिनको अधिकार दिया है कि आपके पश्चाताप और चंगा करने में मदद करने को। कृपया याद करें, यद्यपि आपके पश्चाताप की विस्तारता और एकरता आपके पापों की गंभीरता और प्रकृति से मेल खाता हो, विशेषकर अंतिम दिनों के संतों के लिए जो पवित्र अनुबंध के अंतर्गत होते हैं, गंभीर आत्मिक घाव का उपचार और समय से पूरी चंगाई की जरूरत होती है। जिस सिद्धांत को मैंने वर्णन किया है, प्राचीन काल का और संसार से बहुत से लोगों के लिए बेकार का है, जो जननन की पवित्रता और मानव जीवन के योग को कम कर लगातार मजाक उड़ाते हैं। परंतु प्रभु की सच्चाई धुंधली अलोकप्रिय लोगों के परामर्श वोट को कम नहीं होती। मैं वादा करता हूँ कि सदाचार के नियम की आज्ञाकारित हमारे आनंद को नश्वर्त में बढ़ते हैं और हमारी अनंतता में प्रगति करने में संभव करते हैं। शुद्धता और सदाचार अब से, हमेशा से था और हमेशा रहेगा सबसे प्रिय और अमूल्य चीज है। मैं पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से गवाही देता हूँ। आमीन।